नमस्कार भारत, तारीख 8 जुलाई, दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। इराक के बलाद शहर में शियाओं के पवित्र स्थल पर हमला, 20 मौतें। अमेरिका के मिनेसोटा में पुलिस के एक काले व्यक्ति पर गोली चलाने के मामले पर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, घटनाएं बताती हैं नस्लीय भेदभाव अभी भी बाकी है।
When people say black lives matter, that doesn't mean blue lives don't matter, it just means all lives matter.
महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर जाकिर नाइक के भाषणों की जांच के आदेश दिए। जाकिर नाइक ने भारतीय मीडिया को दोषी ठहराया।
A news reporter asked me that was I shocked at reading the news that...
फुटबॉल यूरो कप के दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान फ्रांस ने जर्मनी को हराया। फाइनल में होगा फ्रांस व पुर्तगाल के बीच मुकाबला। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अभी खबर मिल रही है कि इराक की राजधानी बगदाद के उत्तर में शियाओं के एक पवित्र स्थल पर एक आत्मघाती हमलावर और बंदूकधारियों ने हमला किया है। बलाद शहर के सईद मोहम्मद बिन अली अल हादी की कब्र के गेट के नजदीक एक बम विस्फोट हुआ है। खबरों के अनुसार विस्फोट के बाद बंदूकधारियों ने इस जगह पर हमला कर दिया और ईद का त्यौहार मना रहे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इराकी अधिकारियों ने कहा है कि इस हमले में 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मिनेसोटा में पुलिस के फिलांडो कैस्टिल नाम के एक काले व्यक्ति पर गोली चलाने के मामले पर गहरी चिंता जताई है। कल सेंट पॉल में हुई एक घटना में फिलांडो कैस्टिल नाम के एक व्यक्ति की पुलिस की गोलियों से मौत हो गई। पिछले 48 घंटों में अमरीका में इस तरह की यह दूसरी घटना है। परसों लुइजियाना के बैटन रूज शहर में एक अन्य काले व्यक्ति आल्टन स्टर्लिंग की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई थी। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति जिल्मा रुसेफ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू करने वाले विवादित नेता एडवार्डो कुन्हा ने कांग्रेस के निचले सदन में स्पीकर के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को शुरू करने की वे भारी कीमत चुका रहे हैं। कुन्हा पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास से लाखों डॉलर स्विट्जरलैंड में अपने निजी खातों में जमा किए हैं। वे इन आरोपों से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा, मैं खासकर अपने परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूं जिनको मेरे विरोधियों ने नहीं बख्शा और मेरी पत्नी और मेरी बड़ी बेटी पर कायराना हमले किए। मुझे परेशान करने के लिए उन्होंने मेरे परिवार का इस्तेमाल किया। सबसे अधिक मुझे लगता है कि मेरे इस फैसले से मेरे देश का भला होगा। महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया के बाद में राष्ट्रपति मिशेल टेमेर और आने वाले स्पीकर को मैं बधाई देना चाहता हूं। भगवान इस देश का भला करें। ये थे एडवार्डो कुन्हा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थेरेसा मे और आंद्रिया लेटसम के बीच मुख्य मुकाबला होने जा रहा है। इसके बाद इतना तय दिख रहा है कि ब्रिटेन को मार्गरेट थैचर के बाद अपनी दूसरी महिला प्रधानमंत्री मिलेगी। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की जगह ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला इस साल 9 सितंबर को होगा। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय का कहना है कि मदीना में पैगंबर की मस्जिद के पास आत्मघाती विस्फोट करने वाले व्यक्ति एक 26 साल के सऊदी नागरिक थे और दवाओं के आदी थे। हमलावर ने मस्जिद के पास पार्किंग वाली जगह से मस्जिद में घुसने की कोशिश की और सुरक्षा गार्ड के रोकने पर खुद को उड़ा लिया। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। इस कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से करते हैं, जो कि इराक की राजधानी बगदाद के उत्तर से आ रही है। यहां पर शियाओं के एक पवित्र स्थल पर, जैसा कि समाचारों में आपने सुना, एक आत्मघाती हमलावर और कई बंदूकधारियों ने हमला किया है। बलाद शहर के सईद मोहम्मद बिन अली अल हादी की कब्र के गेट के पास एक बम धमाका हुआ और खबरों के मुताबिक विस्फोट के बाद बंदूकधारियों ने इस जगह पर हमला किया और ईद का त्यौहार मना रहे गोलियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 20 लोग इसमें मारे जा चुके हैं, कई घायल हैं। इस खबर के और ब्यौरे की प्रतीक्षा है। और आपको यहीं पर बता दें कि इराक पर जो हमला रविवार को हुआ था, उसमें मृतकों की संख्या बढ़कर अब 281 पहुंच गई है। इस खबर के बाद दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, अमेरिका के मिनेसोटा के एक पुलिस मिनेसोटा में पुलिस के काले व्यक्ति पर गोली चलाने के मामले पर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गहरी चिंता जताई है और कहा है कि वो इससे बेहद आहत हैं। ओबामा ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि नस्लीय भेदभाव अभी भी बाकी है और इस कारण पुलिस व समुदाय के बीच भरोसे की कमी है। उन्होंने कहा,
When people say black lives matter, that doesn't mean blue lives don't matter. It just means all lives matter.
ओबामा कह रहे थे, जब लोग कहते हैं कि काले लोगों की जिंदगियां महत्वपूर्ण हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं कि नीले लोगों की जिंदगियां महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि हर जिंदगी ज़रूरी है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चिंता ये है कि आंकड़ों से पता चलता है कि इस तरह की घटनाएं काले लोगों के साथ ज़्यादा होती हैं और ये किसी और की ज़िंदगी से तुलना करने का मामला नहीं है। बराक ओबामा के शब्द। आपको याद दिला दें कि कल सेंट पॉल में हुई घटना में फिलांडो कैस्टल नाम के एक व्यक्ति की पुलिस की गोलियों से मौत हो गई थी। फिलांडो कैस्टल के मारे जाने का वीडियो उनकी गर्लफ्रेंड ने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पोस्ट किया था। वीडियो में दिखाई दिया कि कैस्टल खून से लथपथ पड़े हुए हैं और उन पर एक पुलिस अधिकारी ने अपनी बंदूक तान रखी है। डायमंड रेनल्ड्स, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड है, उन्होंने कहा,
एक गोली नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, बल्कि पांच गोलियां, वो भी बिना किसी वजह के। एक आदमी कैसे अपने हाथ हवा में उठाकर एक ही वक्त में अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकाल सकता है और आपको यह भी कह रहा हो कि वह हथियारों से लैस है? उन्हें मुश्किल हो रही थी। जब उन्होंने उसे कार से निकाला तो वो उनकी पैंट के पीछे होल्स्टर में रखा हुआ था और वहीं पर पीछे जेब में उनका बटुआ भी था। उन्होंने वहां पर उनकी नाड़ी की जांच नहीं की। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वे सांस ले रहे हैं या नहीं।
डायमंड रेनल्ड्स के शब्द। पिछले 48 घंटों में अमेरिका में ये एक तरह की दूसरी घटना है। एक दिन पहले लुजियाना के बैटन रूज शहर में एक अन्य काले व्यक्ति आल्टन स्टर्लिंग की मौत पुलिस की गोली के लगने से हुई थी। स्टर्लिंग के परिवार ने उनकी मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की है। उनकी बहन मिग्नॉन चैम्बर्स ने कहा,
I really want to know more about what happened, about the whole situation, because my brother didn't deserve it.
मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ था। मुझे पूरी स्थिति के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि कानून को हाथों में लिया गया है।
मृतक स्टर्लिंग की बहन के शब्द। इन घटनाओं के बाद अमेरिका के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों के गुस्से के बीच अब से कुछ देर पहले बराक ओबामा ने नस्ली हिंसा पर अपनी बात रखी है। मैंने वॉशिंगटन में मौजूद बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से पूछा कि ओबामा ने क्या कुछ कहा।
देखें, काफी भावनात्मक भाषण में राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि अमरीका को इसे एक काले समुदाय की समस्या की तरह नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की समस्या की तरह देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मिनेसोटा में या लुइजियाना में जो हुआ है वो कोई छिटपुट घटना नहीं थी बल्कि अमेरिका के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नस्ली भेदभाव का प्रतीक है। उन्होंने कुछ आंकड़े दिए कि राह चलते हुए एक काले व्यक्ति को पुलिस रोकेगी, उसके चांसेस एक सफेद व्यक्ति के मुकाबले 30% ज्यादा है। गोरे लोगों के मुकाबले पुलिस की गोली का शिकार बनने वाले काले लोगों की तादाद दुगुनी है। उनका कहना था कि ज्यादातर पुलिसकर्मी अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस व्यवस्था में सुधार की गति है वो बेहद धीमी है। उनका ये भी कहना था कि इस समुदाय को इतिहास में काफी मुश्किल वक्त देखना पड़ा है और ये पूरी समस्या उनके जीवन काल में या उनके बच्चों के जीवन काल में खत्म हो जाए ऐसा नहीं होगा, लेकिन अमरीका इससे जैसा अभी कर रहा है उससे काफी बेहतर कर सकता है और उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसा अमेरिका करेगा। तो एक काफी भावनात्मक भाषण, आप कह सकते हैं दिल से निकली हुई बातें, जो एक अफ्रीकी अमेरिकी या काले नागरिक के तौर पर उन्होंने इस ओहदे पर पहुंचने से पहले खुद भी महसूस किया है और उन्होंने पहले इसका जिक्र किया है कि जब वो खुद एक नौजवान थे और दुकानों में घुसते थे तो पीछे पीछे जो दुकान के जो सिक्योरिटी होती है वो आते थे, जैसे कि एक शक की निगाह से देखा जाता है काले व्यक्ति को। ये उन्होंने पहले के अपने भाषणों में कहा हुआ है।
ब्रजेश, इसके अलावा बराक ओबामा राष्ट्रपति के बयान की हमने बात की, उनका भावुक भाषण की हमने बात की, बाकी किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं?
देखिए, एक तो न्याय मंत्रालय ने लुइजियाना के मामले में संघीय जांच का ऐलान कर दिया है। वहीं मिनेसोटा के गवर्नर ने भी ऐसी ही जांच की मांग की है, बल्कि मिनेसोटा के गवर्नर ने तो बेहद, जिसे हम ब्लंट भाषा कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया। सुनिए क्या कहना था मिनेसोटा के गवर्नर का।
Would this have happened if those passengers, the driver and the passenger were white? I don't think it would have.
अगर कोई बुरा व्यक्ति वो गाड़ी चला रहा होता तो क्या उसके साथ पुलिस यही सलूक करती? मुझे नहीं लगता है ऐसा होता। और ये आप कह सकते हैं इस पूरी समस्या की जड़ में है। और इस वक्त न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और लुइजियाना में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, लेकिन शांतिपूर्ण है प्रदर्शन। जो पहले जिस तरह की घटनाएं हुई हैं इस तरह की, उनमें भीड़ का गुस्सा कई बार काफी भड़क गया था, जिसके बाद लूटपाट और दंगे भी हो चुके हैं, लेकिन इस बार फिलहाल इस तरह की खबरें कहीं से नहीं सुनने को मिली है। लेकिन लोगों में काफी गुस्सा है इस बात को लेकर। और जिससे भी आप बात करें, खासतौर से खालिद समुदाय के लोगों से अगर बात करें, उनकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये ऐसा लगता है कि जैसे काले लोगों को मारने का मौसम आया हुआ है अमरीका में।
बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय जानकारी दे रहे थे ओबामा के भाषण के बारे में, और बता रहे थे कि किस तरह से अमेरिका में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड, यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज़, और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। रुख भारत का करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर जाकिर नाइक के भाषणों की जांच करने के आदेश दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन भाषणों में युवाओं को चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने की प्रेरणा मिलती है। डॉक्टर जाकिर फिलहाल मक्का में हैं और उन्होंने एक वीडियो के जरिए संदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने इन सब के लिए भारतीय मीडिया को दोषी ठहराया है। पूरा ब्यौरा सुनिए निखिल रंजन से।
महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर जाकिर नाइक के भाषणों की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। इसके तुरंत बाद ही मुंबई में डॉक्टर नाइक के दफ्तर को सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले लिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के कैफे पर हमला करने वाले चरमपंथियों में एक डॉक्टर नाइक को फॉलो करता था। बांग्लादेश के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि नाइक के भाषणों में कुछ ऐसा हो सकता है जो युवाओं को चरमपंथ की ओर ले जाता हो। वैसे डॉक्टर नाइक अपने एक भाषण में अलकायदा के नेता रहे ओसामा बिन लादेन का समर्थन करने की बात कह चुके हैं। ढाका हमले के बाद जब डॉक्टर नाइक का नाम चर्चा में आया तो उन्होंने इस्लामिक स्टेट को गैर इस्लामी बताया और इन हमलों की निंदा भी की, लेकिन भारत में उन्हें लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। डॉक्टर नाइक के टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले भाषणों और उन्हें लाइव सुनने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद है। ढाका में जब हमला हुआ तब से वो मक्का की यात्रा पर हैं। हालांकि उन्हें इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि हमलावरों में एक चरमपंथी उन्हें फॉलो करता था। उनका कहना है कि बांग्लादेश के लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं और आधे से ज्यादा बांग्लादेशी उनके फैन हैं। डॉक्टर नाइक के दफ्तर ने व्हाट्सएप के जरिए उनका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है,
A news reporter asked me that was I shocked at reading the news that came in headlines in most of the news.
मुझसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि ढाका का एक चरमपंथी आपको फॉलो करता था, क्या आपको इससे हैरानी हुई? मैंने कहा नहीं, क्योंकि पीस टीवी नेटवर्क के जरिए मुझे लाखों लोग सुनते और पसंद करते हैं। भारतीय मीडिया का ये कहना कि मैं चरमपंथ को बढ़ावा देता हूँ, दुष्टतापूर्ण है।
डॉक्टर नाइक का पीस टीवी के नाम से एक चैनल है। भारत में इस चैनल पर प्रतिबंध है, लेकिन माना जाता है कि कुछ इलाकों में केबल टीवी के जरिए ये चैनल प्रसारित होता है। डॉक्टर नाइक को लेकर वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी विवादों में घिरे हैं। दिग्विजय सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्हें डॉक्टर नाइक की प्रशंसा करते सुना जा सकता है।
डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला, और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को एक गलत तरीके से उसको पेश करते हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए।
हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि सबूत हो तो सरकार डॉक्टर नाइक पर कार्रवाई करे।
आई हैव अपील फॉर कम्युनल हार्मनी एंड आई हैव अपोज्ड।
मैंने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अपील की है, हिंदू और मुस्लिम चरमपंथ का विरोध किया है। अगर सरकार के पास डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ सबूत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
डॉक्टर नाइक उमरा के लिए फिलहाल मक्का गए हैं। डॉक्टर नाइक ने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, लेकिन प्रसिद्धि उन्हें इस्लाम पर दिए भाषणों से मिली है। इस्लाम में योगदान के लिए सऊदी अरब में उन्हें कई अवार्ड भी दिए गए हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर जाकिर नाइक के भाषणों की जांच करने के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ में माओवाद प्रभावित सुकमा जिले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाकर ग्वाल इन दिनों सुर्खियों में है। प्रभाकर ग्वाल को इस साल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जनहित का हवाला देकर नौकरी से बर्खास्त किया था, जबकि ग्वाल की छवि एक ऐसे न्यायाधीश की थी जिनके फैसले जनहित में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते थे। कड़क छवि के चलते सरकार ने उन्हें सीबीआई का विशेष जज बनाया था, लेकिन साल भर के भीतर ही कथित जनहित में बर्खास्त करने के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। अब ग्वाल अपनी बर्खास्तगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में पिछड़ी जाति के प्रभाकर ग्वाल 2006 में न्यायिक सेवा के लिए चुने गए और उनकी छवि ऐसे जजों में शुमार रही है जिनके फैसले बेहद दमदार रहे हैं। 2014 में बिलासपुर में जज रहते हुए उन्होंने जमीन घोटाले के एक ऐसे मामले में लोगों को सजा सुनाई जिसमें सीधे तौर पर राज्य के एक कद्दावर मंत्री शामिल थे। पिछले साल जुलाई में ग्वाल ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में हुए घोटाले में एक पुलिस अधीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। इसके बाद प्रभाकर ग्वाल का तबादला माओवाद प्रभावित सुकमा जिले में कर दिया गया। सुकमा में धोखाधड़ी और गबन के मामले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के दो इंजीनियरों को 12-12 साल के कारावास और 50-50 लाख के जुर्माने का उन्होंने फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसी भारी भरकम जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। बस्तर में रहते हुए उन्होंने पुलिस द्वारा निर्दोष आदिवासियों को माओवादी बताकर पेश किए जाने वाले मामलों में भी सख्ती दिखाई और हालत ये हो गई कि पुलिस के अधिकारियों ने अपने पुलिसकर्मियों के हौसले पस्त होने का हवाला देकर प्रभाकर ग्वाल की शिकायत आला अधिकारियों से करनी शुरू कर दी। सुकमा जिले के कलेक्टर ने तो प्रभाकर ग्वाल को फोन करके मुकदमों में फैसला करने से पहले उनसे राय लेने के निर्देश भी दे दिए। इस साल अप्रैल में ग्वाल को बिना सुनवाई का अवसर दिए बर्खास्त कर दिया गया। हमने प्रभाकर ग्वाल की बर्खास्तगी के मामले में राज्य के विधि मंत्री महेश गागड़ा के साथ साथ हाईकोर्ट और विधि विभाग के अधिकारियों से बार बार संपर्क कर उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन हमें रिकॉर्ड पर कुछ बोलने के बजाय प्रभाकर ग्वाल की बर्खास्तगी के ऑर्डर की प्रतिलिपि दे दी गई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संकेत ठाकुर कहते हैं,
उन्हें अंततः सुकमा स्थानांतरित किया गया काला पानी की तरह, और वहां भी उन्होंने ईमानदारी से जो नकली मुठभेड़ या नकली केस बनाए जाते रहे उस पर उन्होंने प्रश्न किया और पुलिस अधिकारियों को काफी फटकार लगाई। प्रभाकर ग्वाल साहब की वजह से 1000 निर्दोष आदिवासी जिन्हें पुलिस ने नक्सली बता दिया था उनको उन्होंने निशर्त रिहाई दिलवाई। तो प्रभाकर ग्वाल साहब अपनी ईमानदारी की वजह से सरकार की आंख की किरकिरी बन गए थे।
प्रभाकर ग्वाल के मामले में मानवाधिकार संगठन PUCL एक याचिका इसी सप्ताह हाईकोर्ट में दायर करने जा रही है। संगठन की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर लाखन सिंह कहते हैं,
हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त किए गए, हम ये जरूर कह रहे हैं कि उस आधार को ही बनाकर इस तरह के निर्णय लिए गए। PUCL ने तय किया है कि हम इस केस को तो लड़ेंगे, जस्टिस ग्वाल के केस को जस्टिस ग्वाल लड़ रहे हैं, लेकिन ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। पुलिस ने जिस तरह रिपोर्ट किया है उन खिलाफ में हाई कोर्ट में और जिस आधार पर निलंबित टर्मिनेट किया गया है, ऐसा हम मानते हैं। यदि ऐसा है तो हम एक पृथक केस दायर करेंगे PUCL की तरफ से। किसी पुलिस के अधिकारी हक नहीं है कि वो जज के खिलाफ इस तरह कंप्लेंट करें।
प्रभाकर ग्वाल भी अपने मामले को अब ऊपरी अदालत में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और यह बात बहुत साफ हो गई है कि उनकी बर्खास्तगी से शुरू हुआ विवाद अभी तो कम से कम थमने वाला नहीं है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और कार्यक्रम में अब अखबार के पन्ने पलटने का वक्त आ चला है। मानसी, क्या कह रहे हैं अखबार आज?
आज के हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में, लगभग सभी अखबारों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अफ्रीका यात्रा, बांग्लादेश में हुए बम धमाके, विंबलडन में सेरेना विलियम्स का प्रदर्शन और विवादास्पद मुस्लिम उपदेशक जाकिर नाइक की तारीफ करने वाले वीडियो पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान को प्रमुखता से छापा है। अंग्रेजी के अखबार दी स्टेटमेंट के अनुसार, अफ्रीकी दौरे पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा चरमपंथ है। उन्होंने घोषणा की है कि भारत मोजाम्बिक को जरूरी दवाएं मुहैया कराएगा और भारत मोजाम्बिक से दालों का आयात करेगा। अंग्रेजी के अखबार दी हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर है सेरेना विलियम्स की तस्वीर, जिसमें वो अपना बायां हाथ ऊपर किए हुए हैं और महिलाओं के मुकाबले में अपनी जीत का ऐलान कर रही हैं। तस्वीर के ऊपर लिखा है, विंबलडन में बहनों का खेल देखने को नहीं मिलेगा। आपको बता दूं कि सेरेना की बहन वीनस विलियम्स सेमीफाइनल का मुकाबला हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। दी पायनियर में छपी एक खबर के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल, आपने नाम सुना होगा, इसके कॉमन इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर की बुरी हालत है। ऑपरेशन टेबल के ऊपर लगा फोकस लाइट धीमा है और ठीक से काम नहीं करता। ऐसे में डॉक्टरों को नाजुक ऑपरेशन भी कम रोशनी में करने पड़ते हैं। हिंदी के बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर के अनुसार कॉरपोरेट फाइनेंस में 15 साल से ज्यादा अनुभव रखने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट सरविता सेठी कोका कोला इंडिया की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी बनने जा रही हैं। सेठी अभी देश से बाहर हैं, लेकिन जल्द ही वे अपना कार्यभार संभाल सकती हैं। इधर दैनिक भास्कर में छपी एक खबर के अनुसार केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा है कि दो कौड़ी के नेता और बाबू चंडीगढ़ में तय कर रहे हैं गुड़गांव का विकास। बताया गया है कि गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन ना होने पर वे नाराज थे और इस विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि प्रदेश के रेवेन्यू में सबसे अधिक पैसा गुड़गांव देता है।
बहुत बहुत शुक्रिया मानसी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी की सफाई को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे का उद्घाटन उत्तराखंड के हरिद्वार से हुआ। इस परियोजना के करीब 20,000 करोड़ रुपए में से 250 करोड़ रुपए उत्तराखंड में खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्री उमा भारती ने दावा किया 2018 तक गंगा पूरी तरह से साफ हो जाएगी। कार्यक्रम में बड़े बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और जल विशेषज्ञ नदारद थे। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
गंगा नदी की आराधना को समर्पित संगीत के साथ मोदी सरकार की उस योजना का उद्घाटन बृहस्पतिवार को हरिद्वार में हो गया, जो 2 साल पहले सत्ता संभालते समय उसके एजेंडे का एक प्रमुख विषय रहा है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में योजनाओं की शुरुआत के मौके पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट की अगुवा और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के अलावा मुख्यमंत्री हरीश रावत, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने योजना को मूर्त रूप देने की कसमें खाई। गंगा से जुड़ी मान्यता से लेकर अपने जीवन तक गंगा की अहमियत के बारे में जोश और भावुकता से बताते हुए उमा भारती ने कहा कि करीब 20,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना दरअसल गंगा को प्रधानमंत्री की दक्षिणा है। उन्होंने ये दावा भी किया कि इसी साल अक्टूबर में इस परियोजना का पहला नतीजा दिख जाएगा।
हमारे बड़े भाई हरीश रावत जी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने गंगा के कार्यक्रम के लिए हमने कभी भी कोई भी सहयोग मांगा। हमसे मीडिया के लोग हमेशा पूछते हैं, क्या राज्य की सरकारें आपकी सहयोग कर रही हैं? आप यकीन मानिए, मैं यहाँ से आपको ये बात कह रही हूँ, प्रायः संसार में गंगा ही एक ऐसा विषय है जिस पर कोई विरोध नहीं करता है।
उमा भारती इस परियोजना और गंगा पर इतनी मंत्रमुग्ध और नतमस्तक थी तो भला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत क्यों पीछे रहते। उन्होंने उत्तराखंड को गंगा का मायका बताते हुए कहा कि राज्य इस नदी के संरक्षण और सफाई के लिए जो भी होगा करने के लिए तत्पर है।
क्या आप अपने पूर्वजों को ऐसे पानी से तर्पण देना चाहेंगे जिस पानी को आप ग्रहण नहीं कर सकते? हम आपसे वादा करते हैं कि हम हरिद्वार में आपको 100% विशुद्ध गंगा जल, जो हमारे उत्तर काशी में बाबा विश्वनाथ पर चलता है, वही हरिद्वार के अंदर माँ चंडी में और माँ माया देवी के चरणों में भी समर्पित होगा।
लेकिन गंगा के संरक्षण को लेकर वैज्ञानिक प्रविधियों पर बोलने के लिए कोई विशेषज्ञ मंच पर नहीं था। पिछले 30 साल से गंगा का सरकारी सफाई अभियान जारी है, करोड़ों रुपए बहाए जा चुके हैं, फिर भी गंगा मैली है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये वे 5 राज्य हैं जिनसे होकर गंगा बहती है, लेकिन इनके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चरमराए हुए हैं। सरकारी रिपोर्टें ही बताती हैं गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गंगा के 2,500 किलोमीटर के सफर में एक अनुमान के मुताबिक 1 अरब लीटर सीवेज उसमें मिल जाता है। घरेलू और औद्योगिक कचरा जो है सो अलग। गंगा के पानी की गुणवत्ता का पैमाना बताता है कि उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 6 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा सूचकांक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का है, इसे सामान्य रूप से 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन हरिद्वार और उससे आगे गुणवत्ता के ये आंकड़े चिंताजनक पाए गए हैं। ऐसे विकट हालात और आस्था, पर्यावरण और विकास की बहसों के बीच मोक्षदायिनी कही जाने वाली गंगा अपनी वास्तविक मुक्ति की तलाश करती रही है। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
जब जीवन बचाने वाला डॉक्टर ही मौत का कारण बन जाए।
मेरे होश उड़ गए जब उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी हमने ये निकाल दिए हैं, दोनों ओवरीज निकाल दिए हैं और यूट्रस भी निकाल दिया है।
जब डॉक्टर ही आपकी तबाही की वजह बन जाए।
I would never advise anybody to come to India. The hospital is not responding, which is the height of inhumanity.
जब जिंदगी न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई बन जाए।
मैंने अपना सारा प्रोफेशन ही छोड़ दिया है, तो मेरी तो पूरी लाइफ इसी तरह से बीत गई है, तो ऐसा जो है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं।
जीवन से खेलते डॉक्टरों से कब मांगा जाएगा जवाब? मेडिकल नेगलिजेंस के मामले क्यों बढ़ रहे हैं?
अभी जो ऊपर लोग बैठे हैं, जिनके ऊपर लोगों को सस्ता, तर्कसंगत और कानूनी बढ़िया इलाज देने की जिम्मेवारी है, उनका झुकाव डॉक्टरों द्वारा बनाए जा रहे पैसे की तरफ है।
क्या सफाई देते हैं डॉक्टर?
कहां करप्शन नहीं है, ये मैं करप्शन डिफेंड नहीं कर रहा हूं डॉक्टर, पर है तो एक्शन लो उनके खिलाफ, एक्शन बड़ा सिंपल है।
और क्या आपके भी हैं कोई अधिकार? मैं विनीत खरे बीबीसी हिंदी रेडियो पर पेश करूंगा खास रिपोर्टें 11 जुलाई से दिन भर और नमस्कार भारत में।
और अब कार्यक्रम में खेल की खबरों की बात करते हैं। फुटबॉल यूरो कप 2016 के दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान फ्रांस ने एक रोमांचक मुकाबले में विश्व चैंपियन जर्मनी को 2-0 से हरा दिया है। अब फाइनल में उसका मुकाबला पुर्तगाल से होगा, जो कि पहले ही वेल्स को 0-2 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना चुका है। हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने बात की फुटबॉल विशेषज्ञ नोवी कपाड़िया से।
उम्मीद थी फ्रांस जीतेगी, लेकिन इस तरह नहीं उम्मीद थी कि जर्मनी जैसी टीम गलतियां करके हारेगी। भाई फ्रांस ने गोल तो नहीं किए, वो तो दोनों गोल जर्मनी ने एक तोहफा दिया है, जैसे कोई नए साल या दिवाली में तोहफा देते हैं, कि ये दूसरा लगातार मैच के एक अनुभवी खिलाड़ी बेस्टियन श्वाइनस्टाइगर जो 2004 से खेल रहे हैं यूरोपियन चैंपियनशिप और विश्व कप, अब वो हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं थी, और वो भी हाफ टाइम से जरा पहले, जो हम बचपन के कोच बोलते हैं कि हाफ टाइम से पहले ध्यान से रहो, गोल कभी ना खाना, क्योंकि वो बहुत बुरा समय होता है, क्योंकि जब हाफ टाइम में अंदर ड्रेसिंग रूम में जाते हो और उसी समय तुमने गोल खाया हो तो हमेशा डिप्रेशन आता है। तो श्वाइनस्टाइगर ने बिना बात की पेनल्टी दे दी उधर, और दूसरे हाफ में दो जर्मन खिलाड़ी थे, एक मतलब कोई इतनी खतरनाक गेंद नहीं थी, हावर्डीज और ये जो युवा खिलाड़ी है जोशुआ किमिच। जर्मनी में कुछ ये अब दिख रहा है वो पहले की तरह नहीं है, जो बिल्कुल एक हमेशा गति और शक्ति से खेलते थे वो अब खूबसूरत खेल भी खेलने लगे, और वो जरा खूबसूरती में ज्यादा ही मतलब ध्यान देने लगे। अब वहां वो अपने 18 गज की बॉक्स में ही पास कर रहे थे, पोग्बा ने दिमाग लगा के छीन के क्रॉस किया, और नॉयर की गलती के भाई वहां तो या तो मुक्का मारो या कलेक्ट करो। खैर ग्रीजमैन की तारीफ है कि गोल पोस्टर बहुत अच्छे निकले, और अब मेरे ख्याल से गोल्डन बूट के तो पक्के बल दावेदार हो गए, 6 कर गए, कोई भी नहीं पकड़ सकता उन्हें, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 3 पे ही है। तो ग्रीजमैन ने बहुत दोनों फायदे उठाए, पेनल्टी भी अच्छी ली और दूसरा गोल भी अच्छा किया।
और अब फाइनल मुकाबला कैसे होने की उम्मीद है?
बहुत शानदार मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि फ्रांस का हौसला तो बहुत ऊपर होगा, फ्रांस को बहुत आत्मविश्वास होगा, लेकिन पोर्चुगल भी बड़ी सही समय पे अपने पीक पे आ रहे हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी एक ये इच्छा है कि अपने देश के लिए एक प्रतियोगिता जीते, तो मेरे ख्याल से बड़ा शानदार मुकाबला होगा।
फाइनल मुकाबला होगा फ्रांस और पुर्तगाल के बीच, विश्लेषण कर रहे थे फुटबॉल विशेषज्ञ नोवी कपाड़िया। उधर विंबलडन में मिश्रित युगल में पिछली चैंपियन जोड़ी भारत के लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस तीसरे दौर में हारकर बाहर हो गईं, और इसी के साथ विंबलडन में भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती भी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, क्योंकि महिला युगल वर्ग में पिछली चैंपियन भारत की सानिया मिर्जा, मार्टिना हिंगिस की जोड़ी भी बाहर हो गई है। और अब कार्यक्रम में से पहले आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। इराक की राजधानी बगदाद के उत्तर में शियाओं के एक पवित्र स्थल पर एक आत्मघाती हमलावर और बंदूकधारियों ने हमला किया है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मिनेसोटा में पुलिस के फिलांडो कैस्टिल नाम के एक काले व्यक्ति पर गोली चलाने के मामले पर गहरी चिंता जताई है। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू करने वाले विवादित नेता एडवार्डो कुन्हा ने कांग्रेस के निचले सदन में स्पीकर के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थेरेसा मे और आंद्रिया लेट्सम के बीच मुख्य मुकाबला होने जा रहा है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। एक घंटे बाद विश्व भारती लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।